ओम शांति। आप सबका भाग्य है कि बाबा ने इस मास में बट्टी का चांस दिया है ज्ञान सरोवर में। वैसे तो सारा कार्यक्रम नीचे शांतिवन में चलता, परंतु कुछ गिनती के बट्टियां बाबा के बच्चों के लिए यहाँ ऊपर होती, उसमें आप लोगों का नंबर लग गया है। तो आपका भाग्य बहुत ही ऊंचा, बहुत श्रेष्ठ है। सही बात तो ये है कि यदि बाबा हमें नहीं चुनता, बाबा हमें खुद दिव्य बुद्धि न देता, तो हम यहाँ कहाँ हाजिर होते। क्यों? क्योंकि भक्ति में तो भगवान को ढूंढते रहे, परंतु अपनी बुद्धि नहीं चलाई कि हम क्या क्या बातें कह रहे हैं। अपने लिए कहते हैं कि आत्मा अनेक योनियों से गुजरती है, परमात्मा के लिए तो ये कह दिया कि कण कण में है। तो हमारी बुद्धि तो बिल्कुल समझ नहीं पाती थी कि मैं कौन हूँ और भगवान कौन है। तो ये भगवान का वरदान है जो भगवान हम सभी को चुन करके अपने कल्प पहले वाले बच्चों को इकट्ठा करके हमें ऐसी दिव्य बुद्धि देते जिसमें हमें परमात्मा की पहचान होती और खुद की पहचान होती। इस जन्म का कोई पुरुषार्थ नहीं होता दिव्य बुद्धि प्राप्त करने का, परंतु जो इतने वर्षों से भक्ति करते करते यहाँ तक आकर पहुँचे और जिन्होंने सच्ची दिल से परमात्मा की खोज की भक्ति की, वैसे तो देवताओं की भक्ति करते तो कुछ न कुछ आश रहती है कि हमें ये या ये प्राप्ति हो, या अनेक आजकल तो प्रकृति की बातों की भी भक्ति करते। तो गीता कहता कि जो जिस भावना से जिसकी पूजा करता, भक्ति करता, उनको उसकी प्राप्ति होती, मैं नहीं प्राप्त होता हूँ। परंतु हम सभी ने कुछ सच्ची भक्ति की होंगे, परमात्मा की खोज की, जिस कारण से भगवान ने हमें ढूंढ कर तुरंत ही ऐसी बुद्धि दी जिससे हमें सहज सहज खुद की पहचान और बाप की पहचान प्राप्त हो गई। आप देखेंगे कि कई हैं जो ज्ञान सुनते हैं, चाहे प्रदर्शनी में हो चाहे कोर्स हो, परंतु सुन करके तो भी बुद्धि का ताला खुलता नहीं है। मैं समझती हूँ कि इतना लॉजिकल ज्ञान है, कितना सहज आत्मा का परिचय है और कितना स्पष्ट बाबा का परिचय है, तो भी लोगों को पता नहीं चलता, वो कर समझ नहीं पाते हैं। तो हम सभी ने किस आधार पर बाबा को पहचाना? बाप ने हमारे बुद्धि का ताला खोला, अथवा बाबा ने हमें तुरंत ही दिव्य बुद्धि का वरदान दिया? एक बारी किसको गिफ्ट मिलती है तो गिफ्ट को संभालना किसका काम होता? जिसको गिफ्ट मिली है, जिसने दी उसको तो हम थैंक्स देंगे, परंतु फिर उसको संभालना, जब मुझे वो गिफ्ट मिली है तो मुझे उसको संभाल के रखनी है। तो मम्मा कहा करती थी कि दिव्य बुद्धि इतनी सूक्ष्म है, इतनी नाजुक है, जो उसको बिल्कुल ऐसे संभाला जाता है जैसे रुई में लपेट करके संभाल के आप विशेष कोई रतन को रखे। कोई रतन को आप ऐसे ही नहीं छोड़ देंगे, आप अच्छी डब्बी ढूंढेंगे, आप उसमें कपूस डालेंगे, रुई डालेंगे, फिर उसके अंदर आप वो रतन रखेंगे। तो रतन की सेफ्टी ना हो, सेफ्टी रहे, कहाँ पर उसको कुछ स्क्रैच न हो जाए, कुछ दाग न लग जाए, नहीं तो उसकी वैल्यू कम हो जाएंगे। परंतु जैसे छोटा बच्चा होता है माँ बाप को मालूम है कि बच्चे को ही संभाला जाता है सिर से, सिर को बहुत प्यार से संभाला जाता है। क्यों? क्योंकि चलो और कुछ कहाँ भी थोड़ा बहुत लग जाए उसकी तो हीलिंग हो जाएंगी, यदि सिर इतना नाजुक है उस समय उसको नहीं संभाल लेंगे तो उसका बहुत नुकसान हो जाएगा। तो दिव्य बुद्धि भी हमारी ऐसे ही छोटे बच्चे के सिर के जैसे नाजुक है, जिसको हमें रुई में लपेट करके संभालना होता। मतलब कि कुछ बात का असर हमारे बुद्धि पर न आए। एक तो होता है जिसको हम माया कहते, बाबा ने पांच विकारों की डेफिनेशन दी है। किसी भी प्रकार का विकार का असर बुद्धि पर आ गया। क्यों? क्योंकि बुद्धि हमारे को मिली है राइट रॉन्ग परखने के लिए, और जितना हम उसको राइट काम में यूज करते जाएंगे उतनी बुद्धि स्वच्छ भी होती जाएंगे, साफ भी होती रहेंगे, परंतु तीक्ष्ण भी होती रहेंगे। जैसे आपने दीदी की बात सुनी, दीदी की पड़क शक्ति बहुत ही तीव्र थी। एक बारी किसी ने दीदी को कहा कि मैं तो बाबा के हर श्रीमत को पालन कर रही हूं परंतु मुझे खुशी नहीं है। तो दीदी ने उसको प्यार से बाबा की ये बात बताई कि ये बातें तुम याद रखो। परंतु बाद में दीदी ने मुझे कहा कि आत्मा ये ऐसी नहीं थी जो मैं उसको सीधे शब्दों में कहूँ कि क्यों नहीं तुम्हें खुशी होती। मैं यदि उसको सीधे शब्दों में कहती तो शायद वो नाराज होकर के फिर बाबा के घर से रूठ जाए, तो मैंने उसको नहीं बोला। बाकी पॉजिटिव तरह से बोला कि तुमको क्या करना चाहिए, और ना करने की बात जो थी, जो दीदी ने उसकी नोट की थी कि कहा कि तीक्ष्ण बुद्धि जैसे कि दो तरफ का चाकू है, चाकू को वैसे एक तरफ का ब्लेड होता, परंतु कहीं कहीं चाकू ऐसे होते हैं जिसमें दोनों तरफ का ब्लेड होता, यहां से काटो चाहे यहां से काटो। तो दीदी बता रही थी कि यदि बहुत अच्छी बुद्धि है, मीन्स बहुत तीक्ष्ण बुद्धि है, परंतु जैसे कि दोनों तरफ से उसको वो ब्लेड है, तीक्ष्ण बुद्धि द्वारा आप अपने बंधन को काटो, बाबा आपको ज्ञान से बताएंगे कि क्या करना है क्या नहीं करना है, उस अनुसार आप उससे काम लो, तो आप अपने बंधन को काटते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। और दूसरी तरफ यदि आप किसी के अवगुणों को देखते रहो, क्यों? क्योंकि तीक्ष्ण बुद्धि न सिर्फ गुणों को देखती है परंतु तीखी बुद्धि होने कारण वो फिर अवगुण भी देखती। तो यदि अवगुण देखने लगे तो फिर तो खुद के पांव काटते जा रहे हैं, अपनी खुशी नहीं रहेंगे, और यदि अपनी खुशी नहीं रहती तो आगे कैसे बढ़ सकेंगे। तो जैसे अपने पांव को काट रहे, तब फिर दीदी तीक्ष्ण बुद्धि बाबा हमें सौगात देते हैं, परंतु हमें ये भी समझना होता है कि किस तरफ से हमें उसको काम में प्रयोग करना है और किस बात के लिए हमें बाबा ने ये बुद्धि दी है। कई बार बाबा कहते हैं ना कि बच्चों की जो दूर की दृष्टि है वो तो बहुत अच्छी है, परंतु जो नजदीक है वो कुछ कमजोर है। मतलब कि दूसरों को देखना, पर को देखना, उसको परखना कि उसमें ये बात है, वो तो इजी होता, परंतु खुद को देखें कि मुझे क्या करना है, मेरे अंदर कौन सी कमजोरी है, वो फिर हमारी तीक्ष्ण बुद्धि होते भी क्योंकि उसमें बिजी हो गई तो फिर खुद को देखने के लिए फुर्सत नहीं, वो चांस नहीं। तो दिव्य बुद्धि को बहुत अच्छी तरह से संभालना होता, कि हम किस कार्य के लिए उसका प्रयोग कर रहे हैं। और उसमें बाबा ने एक और बात बताई है कि जैसे आंख होती, इतना छोटा सा तिनका भी कुछ आंख में चला जाता, बिल्कुल सूक्ष्म छोटा सा तिनका, तो क्या होता, वो दर्द होने लगता, आंख को मचोलते हैं और फिर वो तो लाल लाल भी हो जाती, परंतु पानी भी गिरने लगता। कारण, एक छोटा सा तिनका आंख में चला गया। तो उसका भाव बाबा बताते, इसका मतलब कि कभी अवगुण हमने देखा, वो हमारे दिव्य बुद्धि में नोट होकर के उस तीसरे नेत्र में चला गया, तो वो एक तो खुद को बहुत दुखी बनाएगा, अवगुण देखने से तुरंत ही जो खुद की खुशी है वो खत्म होती जाएंगी, जैसे लीकेज होता जाएगा। कभी कभी क्या होता कि आपको बोतल है या कुछ भी बर्तन है और पानी टिकता ही नहीं है, जितना भी पानी डालो पानी निकलता जाता, तो आपको बहुत ढूंढना पड़ता है कि कहाँ से ये सुराख है, और कितनी भी छोटी सी सुराख है परंतु उसको मुझे बंद करना होगा, क्योंकि उससे पानी बहता जाएगा और बर्तन कुछ काम का नहीं रहेगा छोटी सी सुराख से। तो आप सोचो कि एक तरफ बाबा हमें अच्छी अच्छी बातें सुना रहा और बुद्धि एक बर्तन के समान है, परंतु बर्तन में कुछ सुराख आ गई, किसका अवगुण देख करके कुछ संशय आ गया, तो फिर उसी संशय से, उसी बात के कारण फिर वो लीकेज होती रहेंगी, न खुशी रहेंगी न शक्ति रहेंगी। प्रैक्टिकल किसने ये अनुभव किया है? मैं नहीं मानती कि किसी को इस बात का अनुभव नहीं है। थोड़ा लज्जा कर रहे हैं आज, संकोच कर रहे हैं, थोड़े थोड़े हाथ उठा रहे हैं, परंतु आप थोड़ा ध्यान से खुद के पुरुषार्थ को देखेंगे ना, तो आपको बिल्कुल तुरंत ही पता चलेगा कि हाँ, ये समय था जो मुझे बहुत खुशी थी और फिर अचानक ही वो खुशी गायब हो गई। किसी ने कुछ किया नहीं, मैंने भी कुछ किया नहीं, परंतु मेरी दृष्टि कहाँ पर गई, किसी के अवगुण के ऊपर गई और उसका चिंतन शुरू होने लगा। और जैसे ही उस बात का चिंतन चलता रहा तो बुद्धि और कमजोर होती गई, उसकी शक्ति खत्म होती गई और खुशी भी बहती गई। तुरंत क्लास में बैठे हैं, बाबा की मुरली सुन रही हैं, बहुत अच्छी स्थिति है। क्लास के बाहर निकले, कुछ बाहर वालों का चेहरा देखा, किसी ब्राह्मण ने कुछ ठीक बात नहीं कही, उसके तरफ ध्यान चला गया, बस एक सेकंड लगता वो सुराख आने में, उसको ठीक करने में। फिर जितना हम जल्दी उस बात को समझ लेते और उस बात को हम चेंज कर लेते हैं, बाबा सदा कहते हैं चेक एंड चेंज, चेक करके वहां ही नहीं रुक जाओ, करके उसको चेंज करना बहुत आवश्यक है, नहीं तो आगे चलना मुश्किल होगा। रियलाइज भी किया, चेक भी किया, पता भी चला, परंतु फिर कुछ उसके बारे में किया नहीं, कदम नहीं उठाया उसको कुछ परिवर्तन करने के लिए, तो न सिर्फ हम वहां रुक गए परंतु और ही गिरती कला में आ जाते। तभी मामा का कहना था कि बुद्धि इतनी नाजुक है जिसको बिल्कुल रुई में लपेट करके बहुत संभाल के रखना है, कोई का अवगुण हमारे बुद्धि तक ना आए। मालूम है हर आत्मा को अपना पाठ है, मालूम है एक पाठ न मिले दूसरे से। और तीसरी बात क्या मालूम है कि मैं यहाँ किसी को जज करने के लिए नहीं बैठी हूँ, भगवान है सुप्रीम जज, किसी भी कर्म की हिसाब किताब की बातें वो जानते हैं, न मैं जानती हूँ और न मुझे जानने की आवश्यकता है। और यदि मेरी शौक है, मेरा दिल कहता कि हाँ मैं इस बात को जानूँ, इसने क्या बोला, क्या किया, क्यों ऐसी बात हुई, ऐसे नहीं होनी चाहिए थी, तो यदि हम ज़्यादा जांच करेंगे इन बातों की, तो जैसे कि हमारी बुद्धि उस जजमेंट की तरफ चली गई कि अभी इसका दोष है कि इसने ये बात की है। नहीं, कुछ हुआ, मुझे नहीं मालूम क्या हुआ, क्यों हुआ, जो मेरे संबंध की बात है, मैं उस हिसाब से उस बात को समझ करके फिर आगे बढ़ूं, परंतु उसने ये किया चले, तो बाबा कहते हैं कि बुद्धि आपकी ऐसे तीव्र हो जो परख लेवे कि मुझे अभी क्या सोचना है। मन तो भागता रहेगा, परंतु बुद्धि है कंट्रोलिंग पावर की, और बुद्धि न सिर्फ परखती है परंतु फिर कंट्रोल भी करती है। और यदि बुद्धि से हमने ठीक प्रयोग नहीं, तो वो जो आदत पड़ गई पर दोष देखने की, पर चिंतन करने की, तो वो आदत ही हमें बहुत बहुत नीचे की ओर खींच के ले जाएंगी। तो दिव्य बुद्धि से मुझे किस तरह से काम लेना है वो हम बहुत अच्छी तरह से सोचें। दिव्य बुद्धि क्या देखेंगे, बाबा क्या देखता, कौन है जो अव्यक्त बाबा से मिले हुए हैं, और बाकी मिले हुए मीन्स 2017 दिसंबर तक जो बाबा की मुलाकात होती रही उसमें कौन है जो आए थे। हाँ, ज्यादा होंगे, बाकी सभी 2017 के बाद ज्ञान में आए। ओके, कौन है जो 2017 दिसंबर के बाद मींस 2018 में, 2018 में जो आए वो हाथ उठाए। मुझे लगता है कि आप मेरा प्रश्न नहीं समझ रहे हो। प्रश्न समझा, क्योंकि बहुत है जो दोनों में हाथ नहीं उठा रहे हैं। आप लोग हिंदी,
जो 2018 में बाबा के ज्ञान लिया वो हाथ उठाएंगे, 2018 के बाद, 18 और 18 के बाद।
ओके, और जो उससे पहले आए, ओके, आधा आधा है, अभी समझा। ओके, तो मैं क्यों ये कहती, जिन्होंने बाबा को मंगल मिलन में साकार में अनुभव किया, चाहे वो आज हम अव्यक्त मुरलियां पढ़ते हैं और वो हम सुनते हैं, या मधुबन में हम बाबा को वीडियो में देखते हैं, किसी भी प्रकार से जो भी है, परंतु यदि हम सोचे कि बाबा किस तरह से हर बात देखते, यदि हम ये सोचते हैं कि बाबा ने इस बात पर क्या कहा, बाबा इस बात को किस दृष्टि से देखते, तो फिर हमारी भी बुद्धि एक अलग तरफ काम करने लगती। नहीं तो जो अपने ढंग से बुद्धि काम करती रही है उस आधार पर तो हम बहुत दुखी हो गए, परंतु अभी उसको चेंज करके बाबा के हवाले कर दो, तो जो बाबा देखता, जो बाबा कहता, वही बातें मुझे अपनी बुद्धि से सोचनी है और कुछ भी नहीं। तो जैसे बाबा सदा ही खुश मिजाज, बाबा सदा ही बहुत ऊंची स्थिति वाले, आनंद में रहने वाले, हमारी स्थिति भी ऐसे बनती जाएंगी। क्यों? क्योंकि बाबा मुरली में हर बात हमें स्पष्ट बताते। एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं देती, बाबा ने हर मुरली में साकार चाहे अव्यक्त में कितने बारी हमें कहा होगा, बच्चे देही अभिमानी भव, बच्चे अपने को आत्मा निश्चय करो, हर मुरली कम से कम 6-8 बारी तो बाबा ये बात कहते हैं। कितने वर्षों से कह रही हैं? जब से यज्ञ की स्थापना की है तब से कह रही हैं। और यदि हम ज्ञान में 10 वर्ष से हैं या 20 वर्ष या 60 वर्ष, कितने भी वर्ष हो, हमने ये बात बाबा की कितनी सुनी है और प्रैक्टिकल कहाँ तक हम कर रहे हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। फिर बाबा हर बात स्पष्ट समझा करके फिर आखिरी में बाबा दो बातें कहते। एक तो बाबा कहते हैं राजधानी स्थापन हो रही है, नंबर वार। दूसरी बात बाबा कहते ड्रामा। बाबा को जो कुछ समझाना था बाबा ने समझा लिया और बाकी ड्रामा। बाबा को कुछ और ज्यादा कहने का नहीं रहे, बस जितना समझाना था बाबा ने बता दिया। परंतु फिर दूसरी मुरली में बाबा कोई थकते नहीं है और ये नहीं कहते कि मैं तो बच्चों को 90 साल से ये कहता रहा हूं तो भी बच्चे सुनने के लिए तैयार नहीं। नहीं, बाबा अपना फर्ज पालन करके फिर से हमें याद दिलाते। तो बुद्धिवानों की बुद्धि किस प्रकार से है? सत्यता, जो सत्य बात है बाबा थकता नहीं है वो हमें रिमाइंड करने के लिए, और साथ साथ इतना कल्याणकारी, इतना प्रेम जो बाबा बार बार बच्चों को बताते रहते। ये नहीं कहते कि बच्चे तो सुनते नहीं है तो मैं क्यों और बोलूं। रियलिटी तो ये है कि बाबा ने सब कुछ बता दिया। कौन है जो ज्ञान में 5 साल से अधिक चल रहे हैं? मेजॉरिटी, कुछ थोड़े हैं जो नहीं, 5 साल से कम वाले। मैंने क्यों ये पूछा? क्योंकि जो मुरलियां है हर 5 साल के बाद रिपीट होती, तो 5 साल के अंदर ज्ञान सागर का दिया हुआ ज्ञान, 18 गीता के अध्याय भगवान ने आपके बुद्धि के सामने वो सत्य बातें रख दी, राइट? कईयों ने 2 बारी वो मुरलियां सुनी है, कईयों ने 3 बारी, कईयों से उससे अधिक, परंतु सभी ने कम से कम वो 5 वर्ष की मुरलियां सभी ने सुनी है। तो उसमें बाबा यदि नहीं थकते तो हम औरों के प्रति थकावट हम प्रकट करते, ये तो सुनने वाला ही नहीं है। क्या मैंने उसको समझाने की कोशिश की? क्या मैंने धीरज धर के उसको शांति से, रिस्पेक्ट से वो बात स्पष्ट समझाई? क्या उसको इतना संग दिया जो वो आध्यात्मिकता का रंग उसके ऊपर चढ़ता जाए? ये तो हमने किया ही नहीं, और हम सिर्फ कमेंट कर लेते कि उसको छोड़ दो, हमने तो बहुत कोशिश की। नहीं, इसको छोड़ नहीं देना है, परंतु अपने धीरज के आधार से, ज्ञान की बुद्धि के आधार से, जब तक वो है तब तक मुझे कुछ न कुछ पालना देती रहना है। चाहे वो घर की बात हो, चाहे वो फ्रेंड की बात हो, चाहे वो ईश्वरीय स्टूडेंट की बात हो, परंतु मुझे थकना नहीं है। तो बुद्धि हमारी किस प्रकार से काम करती? बाबा को सामने रख करके, बाबा को देख करके हमारी बुद्धि ऐसे चलती, या अभी बुद्धि थी मैं उसको यूज कर रही हूं? जबकि बाबा ने मुझे अभी दिव्य बुद्धि दी है तो मैं जितना उसको यूज करती जाएंगी उतना वो और अच्छी बनती जाएंगी और उसकी तेज बढ़ती जाएंगी। आपने शरीर के अंग की बात सुनी होंगी कि आपका हाथ पांव चलता रहे, जितना चलाएंगे, जितना चलता रहे वो और मजबूत होता जाएगा। एक्सरसाइज क्यों करते हैं? कि टांगे चले। और ये तो प्रैक्टिकल बात है, दादी जानकी, जब वैसे तो आपको मालूम है कि कराची में भी मम्मा बाबा उनको आउटिंग्स पर ले जाते थे, जो एक्सरसाइज का कपड़े नहीं पहने हुए हैं वो फोटो आता है दादियों का, तो वैसे तो आप सोचो कि उस समय सिंध में कोई भी ऐसे कपड़े नहीं पहनते थे बहने, और बाबा बाबा तो उन्हों को शक्ति आर्मी की रीति से देखते थे। बाबा ये नहीं देखते थे कि ये छोटी कुमारियां हैं या ये स्त्री है, ये तो शिव शक्ति है। तो बाबा ने ही वो उन्हों को कॉस्ट्यूम बनवा के दिए थे जिसमें वो सब हैं दादियां, उस समय तो छोटी छोटी थी, तो उस समय भी एक्सरसाइज था दूर भागना। बखुद उनको पैदल लेके जाते थे पहाड़ों पर, क्योंकि बाबा जानते हैं कि शरीर को चलना है, मन को चलाना है नहीं, मन को शांत रखना है, शरीर को चलाना है। और लोगों को आजकल ऑपोजिट हो गया है, मन को खूब चलाते हैं और शरीर को शांति से बिठा लेते हैं, उसे काम नहीं लेते हैं। पुराने जमाने में घर को संभालने का भी तो काम होता था, आजकल कपड़े मशीन में डाल दो अपने आप ही धुल जाते, बाएं तो नहीं चलती। तो कहने का मतलब कि कोई भी बात जिसको आप यूज नहीं करेंगे वो कमजोर हो जाती, तो हमने अपनी दिव्य बुद्धि को यूज नहीं किया, सिर्फ अपनी पुरानी बुद्धि को यूज करते रहेंगे तो पहले से तो वो आदत बनी हुई है पुरानी बुद्धि को यूज करना, जिसमें हम सबके अवगुण को देखते थे। परंतु अभी दिव्य बुद्धि मिली है कि हम सबके गुणों को देखें, भाई भाई की दृष्टि से देखें, तो हमारी दिव्य बुद्धि और आगे तीव्र होती जाएंगी और उस बुद्धि में प्रकाश आता जाएगा, रोशनी आती जाएंगी, और उसको संभालना है कि कोई कचरा ना आ जाए, क्योंकि कचरे से जैसे फिर पानी निकलने लगता है आंख से क्योंकि दर्द हो रहा, इसी तरह से आत्मा को भी कोई ना कोई प्रकार का दर्द आ जाएगा, जिस कारण से हम भी कहेंगे कि हमारी खुशी छूट गई, पता नहीं क्यों हमें खुशी नहीं आ रही है। तो बुद्धि को मजबूत रखना होता है। बच्ची को मजबूत कैसे बनाते, एक्सरसाइज कराते हैं, परंतु साथ साथ अच्छा भोजन खिलाते। एक बारी बाबा के पास दादी गई सवेरे सवेरे कुछ कारोबार की बात पूछने के लिए, तो बाबा ने दादी को देख करके कहा आओ बच्ची, परंतु बाबा ने फिर समझ गए कि कारोबार शुरू न हो जाए तो उससे पहले ही बाबा कहते, पता है बाबा क्या कर रहा है, बाबा गरम गरम हलवा बना रहा है क्योंकि बच्चों को अच्छा नाश्ता खिलाना है। मतलब शिव बाबा तो आएंगे आकर ज्ञान सागर ज्ञान की वर्षा करेंगे, परंतु ब्रह्मा बाबा भी अपने बुद्धि को ज्ञान मंथन करके, ब्रह्मा बाबा भी हमें अच्छा गरम हलवा खिलाते हैं। आजकल तो संसार बदल गया है, परंतु पहले माताएं गरम गरम हलवा सर्दियों के दिनों में बारिश के दिनों में बच्चों को खिलाती थी ताकि सवेरे कुछ तरावती माल मिले जो शरीर ठीक रहे। तो बाबा हमारे बुद्धि को ठीक रखने के लिए गरम गरम हलवा बनाते हैं। तो गरम गरम हलवा जो हमें मुरली मिलती है हर रोज, बाबा शिव बाबा भी बोल रहे हैं और ब्रह्मा बाबा भी बोल रहे हैं। तभी आप देखेंगे कि शब्द ही आता है पिताश्री, पिताश्री की साकार मुरली, और फिर मुरली के अंदर बाबा कहते हैं बाप दादा, अव्यक्त मुरली में भी बाबा कहते हैं बाप दादा। तो बाप दादा दोनों ही हम बच्चों को बहुत अच्छा भोजन सवेरे सवेरे खिलाते हैं। क्यों? क्योंकि दिन भर फिर वो जो हजम बुद्धि करती रहेंगी, उसे शक्ति लेती रहेंगी, बुद्धि ट्रैक पर चलेंगी, विकारों का भी प्रभाव न पड़े। विकार तो हमारे अंदर है, आत्मा तमो प्रधान है, हर आत्मा, ऐसी नहीं कि बाबा कुछ एक्सेप्शन करते। बाबा ने कई बार कहा है, कितना भी कोई महात्मा हो, कितना भी कोई साधु हो या कितना भी कोई धनवान हो, परंतु सभी जबकि कलयुग में है, सभी उस तमो प्रधानता की स्टेज में है। और फिर हाँ, कोई पुरुषार्थ करके महात्मा बन जाते, उसमें भी पवित्रता की बात आती है, वो पवित्रता को पालन करते, परंतु वो गृहस्थियों को ये बात नहीं सिखाते कि आपको यदि महान बनना है आपको भी पवित्र रहना होगा। क्यों? क्योंकि उनका इंटरेस्ट है कि हमारा पद ऊंचा रहे, और गृहस्थी तो चलो गृहस्थी है ही, वो भले जहाँ तक उनका हो सकता प्रार्थना करे, साधना करे, जो भी कर सके, परंतु उनको वो ये नहीं कहते कि आप भी ऐसे ब्रह्मचार्य व्रत पालन करो जिससे आपकी भी स्थिति इतनी ऊंची बन सके। भगवान बहुत रहम दिल है, भगवान अपने से बड़ा करने चाहता है, अपने से ऊंचा बनाने चाहता है। तो भगवान तो कभी स्वर्ग में नहीं आते, परंतु भगवान अपने बच्चों को इतना सेंसिबल बनाते जो वो फिर आकर के इस पृथ्वी पर पूरा ही राजधानी संभाल सके। बाबा कई बारी एक अंग्रेजी शब्द यूज करते, बाबा बच्चों को इतना सेंसिबल बनाते हैं जो सत्युग में किससे राय लेने की भी दरकार नहीं होती। और आज आज आप सोचो, जितना कम के अंदर मुख्य लोग होंगे, एडवाइजर्स भी उनको इतने होंगे। आजकल उनको कंपनीज में कहते हैं कंसल्टेंट, कितने कंसल्टेंट बने में। और पार्लियामेंट में भी प्राइम मिनिस्टर को भी राय देने वाले एडवाइजर्स होंगे, भिन्न भिन्न टॉपिक के, भिन्न भिन्न डिपार्टमेंट के। और बाबा बच्चों को अपने से भी इतना ऊंचा बनाते हैं जो आधा कल्प, क्योंकि श्रीमत को पालन किया है, अपने बुद्धि को श्रेष्ठ बनाया है, तो बाबा हमें इतना ऊंचा बनाते हैं जो आधा कल्प किसी से राय लेने की दरकार ही नहीं। परंतु वो तब जबकि हम श्रीमत को पालन करें और अपनी दिव्य बुद्धि को संभाल के रखें ताकि उसका ठीक प्रयोग होता रहे। तो हर बात में बाबा कहेंगे कि हाँ, बच्चों ने खुद को पहचाना, बाप को पहचाना, कर्म फिलॉसफी को पहचाना, ये चार बातें ने पहचान ली तो बच्चे बड़े सेंसिबल हैं, क्योंकि ये चार बातों के आधार पर ही है। नहीं तो कोई को भी संकल्प आता है सेवा करने का, और थोड़ा सा भी सेवा करने के लिए योग्य बनते हैं इन चार बातों के आधार पर। तो अपने बुद्धि द्वारा जो बाबा हमसे प्रश्न पूछते हैं मुरली में चार्ट के लिए, मेरे में किस प्रकार के कमियां हैं, किस प्रकार की कमजोरियां हैं, किस प्रकार का अवगुण है, यदि हम न्यारा होकर के खुद को झांक के देखेंगे तो उसमें फिर हमें इस बात की पहचान आती जाएंगी कि किस कारण से हमारी बुद्धि इतनी शक्तिशाली नहीं है जितनी हम चाहते हैं। शक्तिशाली बुद्धि का मतलब एक सेकंड में अपने मन को कंट्रोल कर सके, एक सेकंड में बाबा की याद अथवा कनेक्शन जोड़ सके, एक सेकंड में कोई भी सामने समस्या आई, बाबा से लिंक जोड़ा, बाबा का, और उसको फिर हमने प्रैक्टिकल अप्लाई किया। तो ये कुछ कुछ निशानियां है तीव्र बुद्धि की, परंतु और भी लिस्ट है लंबी, आप उस पर खुद भी विचार मंथन करना। ज्ञानी बुद्धि, दिव्य बुद्धि, तीव्र बुद्धि, उसकी निशानियां क्या क्या है, आप मंथन करके अपने लिए लिस्ट निकालना। परंतु अभी की जो बुद्धि है, बार बार हम खिसक जाते, परंतु खुद को पहचाने अच्छी तरह से कि मेरे में कौन सी बात की रुकावट है जिस कारण जो स्थिति मैं बनाने चाहती हूँ वो नहीं बन पाती, या जो हम योग का अनुभव करने चाहते हैं हम नहीं कर पाते। तो अच्छी रीति खुद को जानेंगे तो फिर कोई भी बात आती पहले से ही आपको उसकी जानकारी होंगी। क्यों? क्योंकि आपने देख लिया कि पैटर्न क्या है, किस कारण से मेरे व्यर्थ संकल्प चलते, किस कारण से मेरी बुद्धि थोड़ी हिल जाती। ये है खुद को पहचाना कि मेरे अंदर अभी क्या क्या चल रहा है और बाबा किस ढंग से हमें बता रहे हैं कि हमें कहाँ तक पहुंचना है। ठीक है ना? क्लियर? ओके। तो एक तो खुद को पहचाना, ताकि जो बाबा कहते हैं थिंक बिफोर यू थिंक, सोचने से पहले ही सोच लो। मतलब मुझे मालूम है कि इस व्यक्ति से के साथ कुछ हिसाब किताब है, तो जब जब मैं इस व्यक्ति को देखती हूँ तो मेरी बुद्धि में अनेक प्रकार के बातें, इतनी अच्छी बातें चल पड़ती। तो जब मैं उसको देख रही हूँ कि वो नज़दीक आ रहा, मैं खुद को जान गई कि इसके कारण ही मेरे बहुत व्यर्थ संकल्प चलते। खुद को जान लिया तो जब मैं उसको देखूं, मेरा खास ध्यान जाए कि ये आत्मा शिव बाबा की संतान, इस आत्मा के अंदर भी वो शांति का आदि गुण जरूर समाया हुआ है, तो मैं उसको उस दृष्टि से देखूं, न कि और कोई फालतू चिंतन चले। थिंक बिफोर यू थिंक। देखा और तुरंत ही समझ गए कि मुझे किस रास्ते को पकड़ना है, इस रास्ते को नहीं उस रास्ते को। बाबा ने क्या कहा, उसको मुझे किस दृष्टि से देखना है। बस इसी तरह से खुद को जानना, कई बार लगता है कि हमने इस विकार पर विजय प्राप्त कर ली और फिर कुछ समय के बाद फिर से वो बात उत्पन्न हो जाती। हमने इस जन्म की बातें भी पूरी नहीं समझी है तो 63 जन्म कहाँ तक हमने समझा है, कौन सी बात हमारे अंदर कहाँ कहाँ छिपी हुई है, अभी तक मुझे और दिव्य बुद्धि को तेज करके अंदर की यात्रा और करनी होगी, ताकि अंत में मुझे अपने आप से कुछ सरप्राइज न हो। अचानक कुछ भी हो जाए तो ऐसे नहीं कि मेरा कुछ छिपा हुआ संस्कार अभी तक अंदर है जो मैंने साफ नहीं किया है वो निकल आता। नहीं, अभी से ही अंदर की यात्रा करके अच्छी तरह से खुद समझ लेवे और फिर दिव्य बुद्धि द्वारा बाप को जानना। मोटी बुद्धि तो भगवान को पहचानती ही नहीं और पत्थर बुद्धि तो कहती है कि भगवान है ही नहीं, परंतु हमें तो दिव्य बुद्धि मिली हुई है जिससे हमने बाप को जाना है। परंतु जो बाप है, जैसा है, उसमें पूरा ही विश्वास रख करके आगे चलना, उसमें भी फिर बाबा कहेंगे नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। और ये शब्द नंबरवार का आज का नहीं है, जैसे ही बाबा की पधरावनी हुई उसी समय जो बाबा के बच्चे आए 400 से अधिक आए, फिर पहुंचे आबू में 350, उस बीच में 500 प्लस गायब हो गए। तो ये जो नंबरवार की बात है तब से ही है, शुरू से ही, आज की नई बात नहीं है। परंतु उन 350 में भी आज हम विशेष किसका स्मरण करेंगे, अच्छा किसके विशेष गुण गान करेंगे? 360 का तो 50 का तो हम नहीं नाम लेते हैं, हम लेते हैं करीब 20, 15, 20, उससे ज्यादा नहीं। तो इन आत्माओं ने ऐसे पुरुषार्थ किया है जो आज तक भी हमारी बुद्धि अथवा विवेक मानता है कि बहुत ऊंची आत्माएं हैं। आप सोचो कि जिन्होंने ज्ञान, उसमें भी आधे तो थे जिन्होंने 2017 से पहले ज्ञान लिया था, तो न सिर्फ आप बाबा मिलन में आए परंतु आपने अनेक दादियों को देखा। पहले तो बहुत लंबी लाइन होती थी दादियों की, परंतु फिर भी 2017 तक तो अपनी मुख्य दादियां कुछ तो रही हुई थी, तो उन्हों को भी आपने देखा है, पालना ली है। और यदि उस घड़ी इतना समझ नहीं पाए, आज तो उन्हों की बातें बुक्स भी है, क्लासेस भी है, वीडियोस भी है, बहुत कुछ सामान है आप सबके लिए। तो कोई ये ना कहे कि हमने उन्हों को नहीं देखा, नहीं, जानना जानना ज्यादा आवश्यक होता। आंखें तो कई बातें देखती फिर भूल भी जाते, परंतु बुद्धि से जान लेते हैं तो फिर तो अच्छी तरह से समझ में आता। तो मैं क्यों ये बात कहती कि बाबा जो कहे क्या मुझे उसमें निश्चय है, कहां तक मैंने पहचाना है कि भगवान आकर के अपना कार्य कर रहे हैं, भगवान ने हमें अपने कार्य में सहयोगी बनाया है, भगवान के हम डायरेक्ट संतान है, हमारा टीचर खुद भगवान है। जितना इन बातों को गहराई से सोचेंगे उतनी पहचान बढ़ती जाएंगी और बुद्धि और शक्तिशाली बनती जाएंगी। जिस बुद्धि को स्वयं की पहचान और बाप की पहचान है, ऐसी बुद्धि जिसको बाबा कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयंती, तो जिस बुद्धि में इतनी शक्ति है, विश्वास है, तो ही फिर उस बुद्धि को कहेंगे निश्चय बुद्धि विजयंती। तो बाबा को जो है जैसा है उस अनुसार जानना बहुत ही आवश्यक है। और तीसरी बात को जानना, ड्रामा, ड्रामा कल्याणकारी है। कौन मानता है कि यह सही बात है? पक्का? कोई भी बात हो जाए आपके मन में तुरंत ख्याल आता ड्रामा कल्याणकारी? हाँ, कब 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 आता? ड्रामा बिल्कुल कल्याणकारी है। और कब कब आता? इसमें कुछ कल्याण तो होगा ही। विवेक कह रहा है कि बाबा ने कहा है, परंतु फिर भी होगा ही। अभी तो पहचान नहीं हो रही है कि क्या कल्याण है, फिर भी उम्मीद रखते हैं कि कुछ ना होगा ही। और फिर कई है जो कहेंगे ड्रामा कैसे कल्याणकारी, ऐसे थोड़े होना चाहिए था। तब बाबा कहते हैं नंबरवार, निश्चय में भी नंबरवार। बाबा सदा कहते मीठा ड्रामा। बाबा ये भी नहीं कहते कि ड्रामा कल्याणकारी है, बाबा को तो ड्रामा बहुत मीठा लगता। एक बारी दादी बैठी थी बाबा के कमरे के आगे, कुछ मनन चिंतन कर रही थी, तो बाबा पास करके जा रहे थे, तो दादी को देखा, कहा कभी भी मेरी बेटी की कंप्लेन नहीं करना। तो दादी देख रही थी बाबा को और विचार कर रही थी, मैंने तो किसकी कंप्लेन की नहीं है। बाबा फिर भी कहे मेरी बेटी बहुत मीठी है, ड्रामा मीठी बेटी का कभी कंप्लेन नहीं करना। तो दादी वैसे कुछ और बात तो नहीं सोच रही थी, परंतु बाबा ने अंडरलाइन किया, मेरी मीठी बच्ची का कभी कंप्लेंट नहीं करना। तो आप सोचो बाबा किस दृष्टि से ड्रामा को देखते। बाबा हमारे बुद्धि से भी खेल करते। कभी बाबा कहते कि ड्रामा के बंधन में मैं बांधा हुआ हूँ, परंतु फिर कभी कहते ड्रामा मेरी मीठी बच्ची है। बाबा को भी हमारे बुद्धि को खेल कराने में मजा आता। बुद्धि और शक्तिशाली बनेंगी, क्योंकि दोनों बातें राइट है। बाबा भी ड्रामा के बंधन में है, परंतु दूसरी तरफ ये भी कहेंगे कि हाँ ड्रामा को किसने जाना, ड्रामा भगवान को नहीं जानता, भगवान ड्रामा को जानता। फिर भगवान आकर के हमें ड्रामा के सीक्रेट्स को बताता। तो ड्रामा तो क्या, परंतु भगवान ही सर्वशक्तिवान ऑलमाइटी अथॉरिटी है। तो जितना हम आत्मा परमात्मा ड्रामा और चौथी बात कर्म फिलॉसफी, ड्रामा को जाना मीन समय को पहचाना, परंतु चौथी बात जितना हम ड्रामा और साथ साथ कर्म फिलॉसफी को जानते हैं गहराई से। कर्म का फल मिलता ये तो भारत में प्रचलित बात है, परंतु फिर उसके संबंध से संकल्प का भी हिसाब किताब है। दूसरे कोई ने नहीं बताया, बाबा ने बताया। मेरा संकल्प की किसी के प्रति चलता है, हिसाब किताब बनता है। किसी के गुण देख करके उसके प्रति मेरा संकल्प चलता, वो भी एक बंधन नहीं। ये हम सोचे कि भगवान ने उन्हों को ऐसे गुणवान बनाया, उस व्यक्ति के प्रति मेरा संकल्प चला, बंधन। और किसी के कर्म पर हमने विचार किया, मेरा भी उसमें बंधन आ गया। उसका तो जो कर्म था वो बंधन बन ही गया, परंतु मैंने उसके प्रति सोचा, मेरा हिसाब किताब बन गया। तो ऐसे गहराई से कर्म फिलॉसफी को जानने वाले भी दिव्य बुद्धि कहेंगे। किस प्रकार का मेरा संकल्प चल रहा, किस कारण से मेरी बुद्धि कहाँ जा रही, और मुझे बुद्धि को कहाँ ऊपर लेके जाना है। तो जितना जितना हम इन बातों पर मनन चिंतन करते, उतनी बुद्धि शक्तिशाली बनती जाती। और शक्तिशाली बुद्धि एक तो हमारे मन को कंट्रोल कर सकती। आजकल की मुरलियों में कई बारी आजकल बाबा ने कहा है कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर। तो हमें इतनी शक्तिशाली बुद्धि चाहिए जो लगाम घोड़े को ठीक राह पर चला सके। लगाम कमजोर है तो घोड़ा अपने आप अपनी मर्जी से चलता रहेगा। तभी बाबा कहते हैं कि व्यर्थ संकल्प क्यों चले, जबकि बाबा ने हमें कंट्रोलिंग पावर दी है। उस कंट्रोलिंग पावर को, बुद्धि को शक्तिशाली बना करके वो कंट्रोल हमारे हाथ में रहे, न कि छूट जाए। लास्ट बात मैं इस बात पर दोहराने चाहती हूँ, फिर उसके बाद 5 मिनट योग, फिर शायद 10-15 मिनट छुट्टी होंगी, फिर राखी का प्रोग्राम चलेगा। तो ये बात कि दिव्य बुद्धि का वरदान भगवान ने मुझे दिया है, ये बात सदा मुझे याद रहे। क्यों मैं कहती, क्योंकि जितना आगे बढ़ते हैं ज्ञानी आत्मा योगी आत्मा के लिए एक बहुत सूक्ष्म रीति से परीक्षा आती, अपनी बुद्धि का अभिमान। और जिस घड़ी अपनी बुद्धि का अभिमान आता, वो आपने सांप और सीढ़ी का खेल देखा है ना, तो कहां कहां सांप आता, जहां सांप आता फिर नीचे आना होता, और कहां कहां सीढ़ी होती, कुछ अच्छा पुण्य कर्म किया, कुछ गुण धारण किया, वो सीढ़ी आपको ऊपर ले जाती। तो लास्ट में मानो 97, 98 तक पहुंचे, बाकी दो कदम और आगे है 100 तक पहुंचने का, तो वहां पर एक बहुत लंबा सांप होता है, और वो लंबा सांप है अभिमान, सूक्ष्म अभिमान कि मैं तो ज्ञानी हूं, मैं तो योगी हूं, मैं तो राइट हूं, मैं तो जानता हूं। ये जो अभिमान आता वो आत्मा को बिल्कुल आगे बढ़ने नहीं देता। आगे बढ़ना तो सोचो, परंतु बिल्कुल आत्मा को नीचे ले आता। क्यों? क्योंकि मेरी बुद्धि क्या थी, मेरी बुद्धि ने तो मुझे कलयुग तक पहुंचाया। भगवान की दी हुई बुद्धि मुझे चढ़ती कला में लेके आई, तो मुझे अभी किस प्रकार से चलना है ये याद रखना है कि बाबा ने ये मुझे सौगात दी है, और जो भी ज्ञान इसमें अभी भरा हुआ है जिससे मुझे प्राप्ति कुछ हो रही या मेरे द्वारा अन्य आत्माओं को भी कुछ प्राप्ति हो रही, वो ज्ञान किसने दिया? मेरे पास तो नहीं था। मैं ABC न आत्मा न बाबा न चक्कर को जानती थी, ABC तक भी ज्ञान नहीं था। भगवान ने मुझे जो ज्ञान दिया है इस कारण से आज मेरी श्रेष्ठ बुद्धि है, आज मैं ठीक राह पर चल रहा हूँ। सदा भगवान की रक्षा ऐसे होती रहे जो मेरी बुद्धि पहले रक्षित रहे, नहीं तो फिर नीचे आना होगा। आप राम सीता की कहानी को याद करो, पहले तो आंखों ने धोखा दिया, सोना हिरन देख करके बस मुझे ये चाहिए, और राम सीता को कह रहा है कि अभी तो महल में जाना है, हिरन को तो बाहर रहने दो, उसको तो जंगली पसंद है, उसको तुम पकड़ के लेके जाएंगे महल में तो वो रहेगा ही नहीं, वो तो फिर भी बाहर ही भाग जाएगा। परंतु नहीं, आंखों ने देखा, बुद्धि पकड़ गई, और बुद्धि कहती है मुझे वो ही चाहिए। और फिर कानों ने भी धोखा दिया, कानों ने सुना कि राम मुझे पुकार रहा, उसको कोई तकलीफ है, उस समय उसको समझ नहीं आया कि राम में तो इतनी कैपेबिलिटी है जो वो तो कभी भी किसके बंधन में नहीं आ सकता। परंतु ये सुना तो लक्ष्मण को उसके पीछे भगाया। तीसरा, जबकि हम कर्म इंद्रियों के अभी तक वश है, कोई न कोई कर्म इंद्र हमें धोखा देती ही रहती है, तो फिर आखिर बुद्धि भी धोखे में आ जाती। तो कर्म इंद्रियां जीत भी बनना है, परंतु सूक्ष्म जो बुद्धि हमारी कहते हैं ज्ञान इंद्रियां है, मन बुद्धि संस्कार, तो वो जो ज्ञान इंद्रिय बुद्धि में, बुद्धि की बात है, बुद्धि उस समय समझ रही थी कि मैं तो राइट कर रही हूं ना, इस भिखारी को मैं कुछ दान देना मेरा कर्तव्य कहता, तो ये जो बुद्धि पलट जाती है, श्रीमत क्या थी, तुमको लकीर के अंदर रहना है, और बुद्धि अपने को होशियार समझ करके क्या कहती, नहीं मुझे तो पांव बाहर निकालना है। तो जब बुद्धि का अभिमान आ जाता, वो धोखा जो मिलता दुख देता, और वो बहुत समय तक दुख देता रहता, तो बहुत पुरुषार्थ करना होता है फिर से उस बात को ठीक करने के लिए। तो अब हम ये ध्यान रखें न ज्ञान मेरा है, बाबा का दिया हुआ उमानत है, और न ये बुद्धि मेरी है। बाबा ने मुझे ये वरदान दिया है, मुझे उसको ठीक राह पर रखना है। मुझे कभी भी उसके अभिमान में नहीं आना है कि ये मेरी बुद्धि है, मैं राइट हूँ, मैं ये कहता हूँ। तो बुद्धि सब कुछ कर सकती, दिव्य बुद्धि हमें ऊपर तक चढ़ा सकती, और दिव्य बुद्धि की हमने ठीक रीति संभालने की, बुद्धि को ठीक रीति से अच्छा भोजन खिलाया पिलाया नहीं, उसको हजम नहीं, तो बुद्धि फिर कमजोर होने कारण हमें नीचे भी ले आती। परंतु संगम युग के जो बिल्कुल गिनती के दिन रहे हैं, कितने दिन हम नहीं कह सकते, बाबा ने ही नहीं कहा तो हम कैसे कहेंगे, परंतु ये आप मान लो कुछ गिनती के ही दिन है, ज्यादा तो है ही नहीं। मुझे जितना अपनी दिव्य बुद्धि को और चमकीली बुद्धि बनानी है, बाबा और बाबा का ज्ञान, इन दो बातों के आधार पर बुद्धि को मुझे और आगे बढ़ाना है और अपने ठिकाने पहुंचना है। ओम शांति।